उठ जाग मुसाफिर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। मन के मनोरथ नहीं पूर समावे, अनंक जतन जो धारे, पल पल उठे अनेक तुरंगा, जीवन खेद विचारे। भव दोस्तर ये अति है मीता, एक पलक ना धीर समाई, इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, नित अपना आप बंधाई। छूटन का तो मन में चाओ, पर बंधन पाए घनेरा, ये ही माया भ्रम असगाह है, नित पावे जीव अत पीड़ा। सतगुर साजन सतमत दीनी, जीवन सार लखाई, कारण करता जान के ठाकर, नित तिस हुकम मनाई। सकल मनोरथ त्याग के, प्रभु आज्ञाचित धारी, जो वर तावे सुख कर पूजे, ये छूटन राह सुखकारी। ज्यों ज्यों प्रभु का हुकम मनावे, मनुआ धीर समाए, मंगत निर्मल भक्ति ये ही, मिल सतगुर भेद लखाए। ज्यों ज्यों प्रभु का हुकम मनावे, मनुआ धीर समाए, मंगत निर्मल भक्ति ये ही, मिल सतगुर भेद लखाए।
उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दाता। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, ऐ मेरे मन तू मुसाफिर है, तू सो रहा है, प्रभु इस मन को जागने के लिए कह रहे हैं, तू इसको जगा। मुसाफिर क्यों है? क्योंकि ये पूर्व जन्म से इस जन्म में आया है। मन नष्ट नहीं होता, देह नष्ट हो जाती। तो पूर्व जन्म से पुराना शरीर था इसमें तू निवास कर रहा था, वो तो छूट गया। अब तुझको नया घर मिल गया रहने के लिए वर्तमान शरीर, इसलिए आगे भी तेरी यात्रा जारी रहेगी। ये भी जाएगा, अगला मिलेगा, इसलिए तू मुसाफिर है। तू अपने स्वरूप को देह मत समझ। उठ जाग मुसाफिर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार। मानव देह तुझे क्यों मिली है रहने के लिए? उस सार का विचार। तो संसार के बारे में विचार करता है, अपने बारे में विचार ही नहीं कर। मंगत पल पल खाट लो नाम साहब दाता। जो प्रभु दाता है, जिसने ये देह दी है, जिसने प्रारब्ध दिया, जिसने ये देह का विज्ञान दिया और इसमें वो खुद विराजमान है, आनंद का सागर है, तो उस साहब का, उस मालिक का की तू याद कर। उसकी याद करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए ये मानव देह तुझको रहने को मिले। तो कहां भटक रहा है? आगे याद दिला रहे हैं मन को कि मन के मनोरथ नहीं पूर समाप, अनंत जतन जो धारे, पल पल उठे अनेक तुरंगा, जीवन खेद विचार। तेरे मनोरथ कभी पूरे नहीं होंगे, चाहे कितने भी जतन तू इस मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर ले, मन की तरंगे पूरी करने के लिए कर ले, लेकिन ये बेअंत माया है, तेरी बेचैनी कभी खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए यही तेरे जीवन का खेद है, यही तो तेरे जीवन का दुख है कि बचपन से लेकर आज तक मैं कितनी इच्छा पूरी कर चुका हूं, बेचैनी वैसी वैसी बनी। कोई कपड़े पहनने का शौकीन है तो सारी जिंदगी उसके कपड़े बदलते हुए हो गया, बाहर का फैशन देखते हुए हो गया, आज तक कपड़े से तृप्ति नहीं मिली। जिसको खाने का शौक है वो बचपन से ही खा रहा है, कितने स्वाद ले चुका, जितने ज्यादा स्वाद लेता है उतनी नई इसको वैरायटी याद आती है, नए खाद्य पदार्थ इसको याद आते हैं। कहने का मतलब यह है कि मन के मनोरथ नहीं पूर समावे, अनंत जतन जो धारे। चाहे पूरा जन्म तो इसमें लगा दे मन की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन ये ऐसा मन है जो सदैव खाली ही रहता है, इसमें संतुष्टि कभी हो ही नहीं सकती। तो बुद्धि भगवान ने तुझको दी थी इस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए, तूने उसका यूज ही नहीं किया। उस विज्ञान को ही नहीं समझा जो कर रहा हूं मैं, ये मेरी जिंदगी का धीरे धीरे सर्वनाश कर देता है। कैसे? कि जो जवान देही मुझको भोगने के लिए मिली वो बूढ़ी हो गई, उसकी कैपेसिटी ही नहीं रही, साधन भी यहां भोग ही नहीं सकते। तो ये जब तक मैं सत्पुरुष के अनुसार इसका एनालिसिस नहीं करता, तब तक मैं फिर अपना सही रास्ता नहीं पकड़ता। आगे कह रहे हैं वो, भव दुस्तर ये अति है नीता, एक पलक ना धीर समाई, इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, नित अपना आप। ये मेरा विज्ञान है, जीने का तरीका है। कहते इच्छा से कर्म, इच्छा पूरी करने के लिए मैं कर्म करता हूं, कर्म करते ही फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कपड़ा खरीद के लाए, टेलर के पास सिलवा के लाए, 10-15 दिन में उसे वापस किया, जब आ गया तो पता लगा, अरे एक तो ये नया फैशन आ गया, मैंने तो अभी सिलवाया, नया फैशन भी आ गया। तो इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, कर्म के बाद फिर नई इच्छा पैदा हो जाती, जो इच्छा पूर्ण की उसी में से नई इच्छा पैदा हो जाती। तो नित्य अपना आप बंधन, तो खुद उस बंधन में पड़ा रहता है। खुद मैं कौन हूं? मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, मुझको जीव कहा जा रहा है, जो निर्णय करता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो सुखी और दुखी होता है मन की इच्छा पूरी करके। मन में चेतना नहीं है, चेतना मेरे अंदर है, तो मन के अंदर जो इच्छा होती है उसको मैंने शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा पूर्ण कर भी लिया, लेकिन मेरी बेचैनी वैसी की वैसी बनी रहती है क्योंकि मेरी इच्छा में परिवर्तन हो जाता है। और ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ब्रेक है ही नहीं। इसलिए आप देखते होंगे कि आपका जीवन का एक वर्ष भी ऐसा नहीं बीता होगा पूरे जीवन में जो आप कह सकते हैं मेरा बड़ा चैन का वर्ष मेरा बीता है। इसीलिए साल के 365 दिन मैं बेचैन ही रहता हूं और बेचैनी मेरी बढ़ जाती है उम्र के साथ, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की कैपेसिटी कम हो जाती है, वासनाओं के संस्कार बहुत इकट्ठे हो जाते हैं भोग भोग कर, इसीलिए अंत में मैं बेचैन होकर संसार से विदा हूं। तो कहते हैं छूटन का तो मन में चाहो पर बंधन पाए घनेरा। उल्टा जीवन देखिए, छूटन का तो मन में चाहो पर बंधन पाए घनेरा, ये ही माया भ्रम असगाह है नित पावे जीव अत पीड़ा। मेरे बारे में सत्य ये है, यदि अध्यात्म विद्या के अनुसार मैं अपना विश्लेषण करना सीख लूं तब इन बातों को बड़ी आसानी से वाणी के मैं समझ सकता हूं कि वाणी ये कह रही है छूटन का तो मन में जाओ, किससे छूटना है आप? मन की बेचैनी से छूटना है आप, और बंधन पाए घनेरा। जितनी तू संसार में प्रगति की कोशिश करता है कहते हैं तेरा बंधन बढ़ता जाता है। इसीलिए आप एक पड़ोसी देश है चाइना, अपने को तो आप देख नहीं पाते लेकिन दूसरों को आसानी से देख लेते, पड़ोसी देश है चाइना। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय चाइना की यह हालत थी कि आम लोग वहां पर नशे का सेवन करते थे और एक जैसे बिगड़ा हुआ देश होता है जिसका कोई माई बाप ही नहीं, कोई मालिक ही नहीं, चाइना की यह हालत थी। इसके बाद वहां कम्युनिज्म आया और आज जो हालत देख रहे हैं चाइना की, कितना विकास कर लिया उसने, दुनिया की सेकंड पावर है वो फाइनेंस के मामले में, लेकिन उसका करेक्टर देखिए। भारत जो शांति प्रिय देश है, कितने समझौते किए, नेहरू के टाइम में समझौता हुआ और आज तक समझौते हो ही रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही धोखा देता रहा, भारत की जमीन जो है हड़पता ही रहा, और अभी भी उसकी वही नियत है। तो नंगा भूखा भारत नहीं है, नंगा भूखा तो चाइना है जिसकी तृप्ति ही नहीं हो रही। भारत से ज्यादा उसके पास जमीन है, भारत से ज्यादा उसके पास संपत्ति है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन नियत देखिए हमेशा बिगड़ी हुई है। जैसे डकैत की नियत होती ना, कभी तृप्ति नहीं होता, चाहे एक व्यक्ति है चाहे पूरा देश है। जो वासना है जैसे जैसे मनुष्य इसको पूरी करने की कोशिश करता है और वो भी नाजायज तरीके से, तो ये वासना इतनी गहरी हो जाती है कि मनुष्य को राक्षस ही बना देती है, उसकी बुद्धि गायब हो जाती है, मन से ही प्रेरित रहता है। और वाणी कह रही है मन ये भूत की तरह से, तो चिपक गया एक बार पीछा छोड़ता है नहीं, वो भूत होता नहीं है लेकिन पीछे पड़ जाता है। तो मन भी ऐसी है, इसकी एग्जिस्टेंस कोई तलाश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगी, केवल संकल्प मात्र है, लेकिन मनुष्य इस मन के लिए आत्महत्या तक कर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं ये ही माया भ्रम असगाह है नित पावे जीव अत पीड़ा। तो फिर आगे राह बता रहे हैं क्या करा जाए, कह रहे हैं कि सतगुरु साजन सत मत दीनी जीवन सार लखाई कारण करता जान के ठाकर नित तिस हुकम अमर। सतगुरु साजन सत मत दीनी जीवन सार लखाई कारण करता जान के ठाकर नित तिस हुकम अमर। अब सतगुरु वो साजन है, जैसे स्त्री का पति होता है उसका साजन होता है जो उसके जीवन की रक्षा करता है, जो उसको सुख देता है, जीवन सफल करता है। तो सतगुरु जो है वो हमारा साजन है, वो हमको सतमति दे रहा है, सतबुद्धि दे रहा है। वो क्या है? जीवन सार लखाई, वो सतबुद्धि वो ज्ञान मुझको जीवन की डायरेक्शन दे रहा है। कौन सी डायरेक्शन? जो जीवन का सार है जिसके लिए मानव जन्म मिला है वो सफल हो गया। वो मुझको दिखाई पड़ने लगे, समझ में आ जाएंगे। तो ये गुरु ये काम करता है, वो ज्ञान देता है, वो विज्ञान मेरा समझाता है कि जिस पर चलकर, जिसको समझकर तू इस असीम दुख से मुक्त हो सकता है और असीम खुशी को हासिल कर सकता है। कहते हैं कारण करता जान के ठाकर नित तिस हुकम मनाई। तो आधार क्या है उसका? कह रहे हैं कारण करता जान के ठाकर, वो प्रभु तेरे वर्तमान जन्म का कारण भी है और कर्ता भी है। वर्तमान जन्म मैंने तो बनाया नहीं, मैंने अपने शरीर को बनाया है क्या, मुझको मिला है, तो इसका कारण कौन बना? कारण मेरा पास्ट कर्म का फल है और कर्ता कौन है इसका? कर्ता ईश्वर। ये मनुष्य मेरे पास्ट कर्म को तो मैं तो जानते ही नहीं, कौन से कर्म का फल कब भोगना है मुझको तो पता ही नहीं। तो कारण तो मेरा पास्ट कर्म है, कर्म फल है, लेकिन इसका कर्ता कौन है? वो ईश्वर। वर्तमान जन्म में मैंने क्या करना है, क्या भोगना है, कौन से दुख उठाने हैं, कौन से मानसिक क्लेश से गुजरना है, कौन से सुख मिलेंगे, ये सारा का सारा फिक्स हो गया इसको प्रारब्ध कर। और इस प्रारब्ध का कर्ता ईश्वर ही तो है, मैं कर्ता नहीं हूं। दूसरे दृष्टिकोण से देखो, पास्ट में पिछले शरीर के द्वारा जो मैंने किया था, जिसका फल भोगने को मुझे इस जन्म में मिला है, उस नाते तो मैं ही करता हूं, क्योंकि मैंने अपना ये पैकेज तैयार नहीं किया है, इसलिए ईश्वर मेरे लिए करता है और मैं उससे, उस कर्ता से बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं ऐसा मूर्ख हूं जो मेरे जीवन का कर्ता है उसको भूला हुआ, वो तो है ही नहीं। तो चारों तरफ घर गृहस्थी के लोग, समाज के लोग नजर आते हैं, यही करता है मेरे लिए। तो बताइए मनुष्य जन्म लेकर यह कितनी बड़ी मूर्खता है कि मैं दिन को रात समझ रहा हूं, रात को दिन समझ रहा हूं, और फिर भी कहता हूं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझसे ज्यादा चतुर इंसान तो है ही नहीं मेरे आसपास। तो किस गलत फहमी को लेकर जी रहे हैं? यदि मैंने इस विज्ञान को नहीं सीखा तो आप विचार करो आप कितनी घोर गलती करते हैं और कितने बेचैन होकर जीते। इसी कहते हैं कारण कर्ता जान के ठाकर नित तिस हुकम मनाई। तो मनुष्य जन्म लेकर मेरे अंदर ईश्वर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, पक्का ईश्वर विश्वास होना चाहिए। और ईश्वर विश्वास का मतलब प्रभु ने वाणी के रूप में खुद जो लिखवाया है मेरे लिए, मैंने उसको सीखना था, और सीखने का मतलब होता है उसी के अनुसार मैंने विश्वास करना था, अपनी बुद्धि के निश्चय को बदलना था, क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, सत्य को केवल ईश्वर जानता है। और ईश्वर हमारे सामने किस रूप में होता है? गुरु रूप में होता है। वो गुरु बनकर आता है, हमारा गुरु पर फेथ होता है, वो गुरु वास्तव में परमेश्वर है। तो मैंने उस गुरु पर, उस गुरु के ज्ञान पर, उस गुरु के जीवन पर विश्वास करना था। मुझको क्या करने को कह रहा है? महाजी ने पांच नियम दिए, ये करने को कह रहे हैं ना। तो मुझको जो दैनिक दिनचर्या है या वे ऑफ लाइफ है, वो पांच नियम के रूप में दे रहा है मुझको। मैंने उसका अध्ययन करना था, उसको प्रॉपर तरीके से सीखना था, फिर मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था। जैसे माता पिता मेरे स्कूल का टाइम टेबल बनाते नहीं, बनाते किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो किताबें रखते हैं, वो किस व्हीकल से जाना है उसके इंतजाम करते हैं, वो कब जाना है उसका इंतजाम करते हैं, वो सारे इंतजाम माता पिता करते हैं, क्योंकि बालक अबोध है। तो गुरु जब मिलता है तो उस समय मैं अबोध बालक नहीं होता, मैं बड़ा हो चुका हूं। इसीलिए गुरु ज्ञान को मैंने सीखना होता है, और सीख के अनुसार, उस मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या निर्धारित करनी होती है। क्यों? क्योंकि अपना कारणकर्ता मैं खुद हूं। किसका कारणकर्ता? जो भविष्य मेरे सामने आने वाला है उसका कारणकर्ता मैं हूं। प्रभु मुझको हुक्म दे रहे हैं, मेरा प्रोग्राम लिखकर दे रहे हैं, यदि मैं उसको ना करूं फिर भी, तो फिर कारणकर्ता फिर प्रभु है। तो अगला अपराध, अगले जन्म का जो अपराध मिलेगा वो डिसाइड करेगा क्या मिलेगा। तूने मार्गदर्शन के अनुसार यदि जीवन व्यतीत किया प्रभु के, तो तुझको वैसा ही जन्म दिया जाएगा, वैसी परिस्थितियां दी जाएंगी जैसे महाराज जी ने इस जन्म में आकर क्या किया। संसार का कोई भोग किया उन्होंने? बचपन से ही बुद्धि होश में थी, ईश्वर की प्राप्ति, वो लक्ष्य लेकर संसार में आए थे और लक्ष्य पूरा करके यहां से विदा हुए, अर्थात वो खुद ईश्वर बन गए और संसार के प्रकृति के हर बंधन से वो मुक्त हो गए। इसीलिए अगले कहते हैं कि सकल मनोरथ त्याग के प्रभु आज्ञा चित धारी ज्यो वर्तावे सुख कर पूजे ये छूटन राह सुख कर। तो जीने का तरीका देखो बता रही बात कि सकल मनोरथ त्याग के, तो मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है ना, अरे सारे मनोरथ वो तो त्याग करे। कब त्याग करेगा, कब त्याग करेगा, जब तू तो समझ लेगा इस बात को कि मन की इच्छाएं पूरी करना ये मनुष्य जन्म के लिए पॉइजन है। तो मनुष्य जन्म की जो आवश्यकता है वो तूने पूरी करनी थी, ना कि मन की जो कामनाएं हैं। प्रभु का भी तो इस्तेमाल इसीलिए करता है, प्रभु मेरे पुरुषार्थ से तो ये काम हो नहीं रहा, आप कर दो, तो प्रभु की भी खुशामद करता हूं अपनी मनोकामना पूरी करने की। मुझको पता ही नहीं मनोकामना को खत्म करने के लिए मनुष्य जन्म मिला, मैं उस प्रभु के आगे ही मनोकामना बढ़ाने की बात कर रहा हूं। इसीलिए सारा जीवन मेरा उल्टा बीतता है, चाहे मैं प्रभु को मानू तब भी ना मानू तब भी, जब गुरु की बात मानता हूं तब जाके मेरा जीवन सफल होता है। कहते हैं सकल मनोरथ त्याग के प्रभु आज्ञा चित धारी ज्यो वर्तावे सुख कर पूजे ये छूटन राह सुख का। तो जब मनोरथ त्याग करते हो आपको समझ आ जाती है बात, तब कहते हैं कि प्रभु आज्ञा को चित्त में तुम धारण करते हो, बुद्धि में प्रभु आज्ञा धारण करते हो, प्रभु जो प्रारब्ध दिया है उसके हिसाब से मेरा जीवन चलेगा, कोई मेरा दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो सारी डोर है जीवन की वो आपके हाथ में है, आप अंतर्यामी हैं, कोई मेरा क्या कर सकता है। तो इसीलिए तुमने प्रभु आज्ञा में जीना था, ज्यो वर्तावे सुख कर पूजे ये छूटन राह सुख का। जैसी परिस्थितियां वो दे रहा है मैंने उसको सहन करना है, और सहन ऐसे ही नहीं करना, प्रभु हुक्म में सहन करना है कि प्रभु ने जब मुझे ऐसा रहने को दिया है, ये परिस्थितियां दी है, मैं सहन करूंगा क्योंकि प्रभु ने दी है, किससे शिकायत करूंगा मैं, और प्रभु क्या अन्याय कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे अन्याय करने वाला सामने दिखाई पड़ेगा, इस दर्श ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन सत्य यह है कि तेरे साथ किसी ने अन्याय किया, प्रभु ने वो कंडीशन तेरे प्रार्थना अनुसार पैदा करके तेरे सामने रखी है। तो इसी कहते हैं ज्यो वर्तावे सुख कर पूजे ये छूटन राह सुख कर। अंत में कहते हैं ज्यो ज्यो प्रभु का हुक्म मनावे मनुआ धीर समाये मंगत निर्मल भक्ति ये ही मिल सतगुरु भेद लखाए। यदि तू ये करता है गुरु के मार्गदर्शन अनुसार, प्रभु के मार्गदर्शन अनुसार, कहते हैं ज्यो ज्यो प्रभु का हुक्म मनावे, तो क्या होगा, मनुआ धीर समाये, तेरे मन में धैर्य धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात मन तेरा शांत होता चला जाएगा, हर दिन हर साल तेरा मन शांत होता चला जाएगा। मंगत निर्मल भक्ति यही मिल सतगुरु भेद लखाए, निर्मल भक्ति यही है कि संसार में वासनाओं को सिंप्लीफाई करना, अर्थात कम से कम करने की कोशिश करना, और प्रभु हुक्म में जीने की आदत बनाना, कि प्रभु सुख दुखी तो जीवन में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, जब ये आपने दिए हैं प्रात के रूप में और आप उसकी व्यवस्था कर रहे हो तो मुझे क्या शिकायत हो सकती है। तो प्रभु के हुक्म में जब सहन करता है तो तेरे मन की चंचलता कम हो जाती है, स्मरण करने बैठता है तो कारणकर्ता संसार नजर नहीं आता तुझको, कारणकर्ता प्रभु नजर आते, इसीलिए मन में शांति आती है, मन में धैर्य आता है, और तो प्रेम से प्रभु की याद करके प्रभु का अनुभव अपने देह में करके संसार से विदा होता है। ओम नमः शिवाय।